थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार कितना सुंदर है, कितना मधुर है। यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार।
प्रिय मित्र, प्रविश्व के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय का समापन किया और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 21 से आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम फिर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक आपके वचन को समझ कर अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। हम में से हर एक के जीवन से आज आप बातचीत करें, हमें इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझाएं, सिखाएं ताकि हम अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और हम इस अध्याय के विषय को देखेंगे। इसका विषय है अनंत जीवन में प्रवेश, अनंत काल का अनावरण। अध्याय 21 में अनंत काल का अनावरण किया गया है। नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, नया युग और मेमने की दुल्हन का अनंतकालीन निवास स्थान, जहां हम प्रभु यीशु मसीह की नई सृष्टि में होंगे। वहां हम में वह पुराना स्वभाव नहीं होगा जो आज इतना अधिक प्रभावशाली होता है या दिखता है। आज की भाषा में कहें तो यह अध्याय दुनिया से ही अलग है। इस अध्याय में आरंभिक कुछ पदों को छोड़कर पृथ्वी की बातें कहीं नहीं पाई जाती हैं। इसमें हम कलीसिया का अनंत निवास देखते हैं। स्वर्ग वास्तव में है क्या? स्वर्ग के विषय में अनेक रोमांचक बातें कही जाती हैं और स्वर्ग की चर्चा करते समय हम रुवासे से हो जाते हैं। स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है। वहां आपका अपना निजी पता होगा। वहां आपका नाम आपके ऊपर लिखा जाएगा कि आप अंतरिक्ष में घूमते समय भटक ना जाएं। कोई स्वर्गदूत आपको स्वर्ग लौटा लाएगा। मेरे प्रियो, इस अध्याय में अनंत काल का एक लंबा दृश्य हमारे सामने है, जिसमें हम समय से अनंत काल ही में नहीं नई सृष्टि में प्रवेश करते हैं। नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम हमारा स्वागत करता है। उद्धार पाने वालों ने प्रभु यीशु के समान महिमामय देह को प्राप्त किया है। सब कुछ नया हो गया है। नया जगत, जीवन की नई विधियां तथा आयामों को प्रकट करता है। इस नए सृष्टि के अपने अलग नियम होंगे। संपूर्ण जीवन शैली बदल जाएगी। अध्याय 21 और 22 में दर्शाए गए परिवर्तन हैं। आइए हम देखते हैं। पहला है, नई सृष्टि में न तो पाप होगा, न परीक्षा, न ही प्रलोभन होंगे। यही अपने आप में एक अमूल परिवर्तन है। दूसरा है, परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरता नया यरूशलेम का अर्थ पृथ्वी का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी और संपूर्ण नई सृष्टि और संपूर्ण आकाश गंगा नए यरूशलेम के चारों ओर चक्कर काटेंगे, क्योंकि वहां परमेश्वर और प्रभु यीशु का निवास स्थान होगा। और तब तीसरा, जैसा हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आमूल रूप से बदल जाएगा और नए यरूशलेम तथा पृथ्वी के मध्य यातायात होगा। कलीसिया तो पृथ्वी से कूच कर चुकी होगी और नए यरूशलेम में वास करेगी। मेरा मानना है कि हमारी देह पूर्ण रूपेण भिन्न होगी और गुरुत्वाकर्षण का नियम हम पर प्रभावी नहीं होगा। और चौथी बात है, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि हमें परमेश्वर से सीधा प्रकाश प्राप्त होगा। अतः वहां रात भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी नई देह को सोने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम विश्राम करें। प्रसंगवश मैं तो इसकी प्रतीक्षा में हूं। और तब पांचवी बात, वहां ना तो समुद्र होगा और न ही भूमि होगी। आज पृथ्वी का अधिकांश भाग समुद्र है, लगभग 3/4 भाग। यह पृथ्वी पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। खाने के लिए मछलियां भी नहीं होंगी। अतः प्रभु राज में मनुष्य शाकाहारी होगा, वरन संपूर्ण अनंत काल तक जैसा अदन की वाटिका में था। अनंत मानव का एकमात्र भोजन फलाहार होगा, अर्थात मनुष्य फल खाएगा। और छठवीं बात है, प्रभु यीशु और परमेश्वर तथा परमेश्वर के सिंहासन की उपस्थिति मनुष्य के लिए नया दिन, नई सृष्टि लेकर आएंगे। मेरे प्रियो, नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम। अध्याय 21 के प्रथम पद में यूहन्ना आकाश और पृथ्वी के भाग जाने की चर्चा करता है। लिखा है 21 अध्याय के एक पद में, फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। कहता है फिर मैंने देखा। यूहन्ना बार बार कहता है कि उसने देखा, अर्थात वह हमें बताना चाहता है कि वह संपूर्ण दृश्य को देख रहा है। वह इस अंतिम दृश्य का गवाह है जो अनंत काल का आरंभ करता है। धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है कि नया आकाश और नई पृथ्वी के लिए इस वर्तमान आकाश और पृथ्वी का विलोप होना या नष्ट होना आवश्यक है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 35 पद में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पुरानी सृष्टि पहले आदम के लिए रची गई थी। अंतिम आदम प्रभु यीशु के पास अपने नए प्राणियों के लिए नई सृष्टि है। यशायाह नबी की पुस्तक 65 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नए पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। यशायाह के पुस्तक 66 अध्याय के 22 पद में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को सदा के लिए भूमि देने की और दाऊद को सदा के लिए सिंहासन देने की प्रतिज्ञा की थी। इसके विषय में दानियल ने भविष्यवाणी की थी 2 अध्याय के 44 पद में, परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। नई पृथ्वी इन सब भविष्यवाणियों की पूर्ति देखेगी। पुराने नियम के विश्वासियों का विश्वास को आप देखिए, इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 13 से 16 पद में, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं ला जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। यहां स्वर्गीय से अर्थ यह नहीं है कि वे स्वर्ग जा रहे हैं, परंतु यह कि पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। जब हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं कि तेरा राज्य आए, स्वर्ग में जैसे तेरी इच्छा पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो, तो हम यही कहते हैं कि उसका राज्य इस पृथ्वी पर आए। पत्रस कहता है 2 पत्रस की पत्री 3 अध्याय के 13 पद में, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। मेरे प्रियो, अपनी दूसरी पत्री में पत्रस स्पष्ट कहता है कि हमारी यह पृथ्वी आग से जलकर भस्म हो जाएगी। 2 पत्रस की पत्री 3 अध्याय के 7 पद में और 10 और 11 पद में, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी गड़गड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? जी हाँ, जैसा हमने सुझाया था कि नई पृथ्वी का मुख्य गुण यह होगा कि उसमें समुद्र नहीं होगा, जिसके कारण मौसम अपने आप ही बदल जाएगा, प्रकाश पर भी प्रभाव पड़ेगा, ऋतुएं बदल जाएंगी। नई सृष्टि के परिवर्तनों को समझना मानवीय बुद्धि के परे है। समुद्र मनुष्य के लिए सीमांत और रोधक है, जो अच्छा है तो बुरा भी है। जल प्रलय के समय समुद्र दंड का साधन था, तथापि समुद्र न होने के कारण पृथ्वी की जनसंख्या 2 गुना हो सकती है, क्योंकि भूमि अधिक हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 2 पद में लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हुए हो। मेरे प्रियो, यह हमारी रुचि का विषय होना चाहिए। मेरा मानना है कि नया यरूशलेम वह स्थान है कि हम जो परमेश्वर की संतान है वहां वास करेंगे। जब आप स्वर्ग जाने की बात करते हैं तो आप स्वर्ग के बारे में क्या सोचते हैं? अधिकांश लोगों के लिए यह कहीं एक सुंदर द्वीप है, यह एक निश्चित स्थान है, यह नया यरूशलेम है, यह एक ग्रह ही है। स्पष्ट बात तो यह है कि स्वर्ग के बारे में बहुत कम कहा गया है और वह यहां है, अतः यह पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हुए हो। इस नए यरूशलेम को पृथ्वी का यरूशलेम समझने की भूल आप ना करें। मैं इससे अधिक सुंदर वर्णन नहीं सोच सकता। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हुए हो। अपनी सेवकाई में मुझे सैकड़ों लोगों की शादी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने एक भी कुरूप दुल्हन नहीं देखी। सब अति सुंदर होती हैं। विवाह संस्कार में गीत गाने के बाद पास्टर दूल्हे और उसके साथी के साथ आता है। दूल्हे पर तो उसकी माँ को छोड़ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वही उसे देख देख कर खुश होती है और तब आती है दुल्हन। सब खड़े हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। जब मेरी पत्नी किसी विवाह में नहीं जाती तब मेरे घर लौटते ही वह पूछती है, क्या दुल्हन सुंदर थी? मैं कहता हूं, हाँ, मैंने कभी कुरूप दुल्हन देखी ही नहीं है। मैंने लड़कियों को विवाह के पूर्व और विवाह के बाद भी देखा है और सोचता हूं कि क्या यह वही है जिसका विवाह संस्कार संपन्न किया गया है। उस समय परमेश्वर उन्हें आभा और सुंदरता देता है। दूल्हे के लिए यह एक रोमांचक समय होता है कि वह मुड़कर आने वाली सुंदरी को देखे जो उसकी हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर उस पल प्रत्येक दुल्हन को सुंदरता प्रदान करता है, क्योंकि हमारा नया यरूशलेम जहां हम रहेंगे पति के लिए सिंगार की हुई दुल्हन के समान होगा। यह कैसा अनुपम चित्रण है। मेरे मित्रों, नया यरूशलेम कलीसिया के लिए तैयार किया हुआ निवास स्थान है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 2 और 3 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इससे अधिक सुंदर और उचित चित्रण नहीं हो सकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हमने देखा था कि 1000 वर्ष के युग से पूर्व प्रभु यीशु के आगमन पर मेमने का विवाह है और दुल्हन कलीसिया है। यह गद्यांश पौलुस की बात की पूर्ति करता है जो उसने इफिसुस की कलीसिया को लिखी थी। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 25 और 26 पद में, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु यीशु के न्याय आसन के समक्ष विश्वासियों का न्याय और लेखा होगा। हर एक गलत बात सही की जाएगी, पाप का लेखा लिया जाएगा और प्रतिफल दिया जाएगा। उस समय प्रभु यीशु एक काम और करेगा, वह कलीसिया को वचन के स्नान द्वारा शुद्ध करेगा। परमेश्वर का वचन एक शक्तिशाली शोधक तत्व है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 27 पद में पौलुस कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मेरे मित्रों, अध्याय 21 में हम यही चित्र देख रहे हैं। पवित्र नगर यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर के पास से आ रहा है, जो पति के लिए एक सिंगार की हुई एक दुल्हन के समान है। यह विवाह 1000 वर्ष के युग के आरंभ होने के पूर्व का है, और अब भविष्यवाणी में यह 1000 वर्ष का युग समाप्त होता है। मेरे विचार में यह संबंध अनंत काल में प्रवेश करेगा। पौलुस मसीह यीशु और कलीसिया के इस अद्भुत संबंध की चर्चा करने में इसकी तुलना विवाह के साथ करता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 28 से 32 पद में, इसी प्रकार उचित है कि पति अपने अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ। इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, यह विचार एक रहस्य है जिसका अनावरण अब हमारे लिए किया गया है। विवाह संबंध अति सुंदर एवं अद्भुत संबंध है। यह मनुष्य के लिए परमेश्वर द्वारा स्थापित प्राचीनतम संस्कार है। यह आदि काल में अदन की वाटिका का है और इसी कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऐसे भेद की बात है कि सब विवाह परामर्शदाता और विवाह पर लिखी पुस्तकें विश्वासियों के विवाह के सौंदर्य का सिरा भी नहीं छू पाए। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ आत्मा से भरे हुए विश्वासियों को लिख रहा है और ये निर्देश केवल आत्मा से भरे विश्वासियों के लिए है। ये निर्देश खोए हुए संसार और साधारण विश्वासियों के लिए भी नहीं है। यह गद्यांश के आरंभ में पौलुस कहता है, इफिसियों की पत्री 5:18 में, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। संपूर्ण धर्मशास्त्र में यही एक आज्ञा है जहां आपको आत्मा के लिए कुछ करने को कहा गया है। यह एक दुर्बोध बात है, परंतु हमें इससे विवाह के प्रति एक और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। पत्नी पति की देह है, यह कैसे हो सकता है? क्या आपने एक सुंदर बालक को देखा है जो देखने में तो मां के समान है और अनुचित व्यवहार में पिता के समान है? यह पति पत्नी का एक देह होना है, परंतु इसका अर्थ इससे भी अधिक गंभीर है। पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वह वास्तव में अपने आप से प्रेम करता है। पत्नी के साथ भी ऐसा ही है कि अपने पति से प्रेम करके वह वास्तव में अपने आप से प्रेम करती है। इससे अधिक घनिष्ठता हो ही नहीं सकती। मेरे प्रियो, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मेरे पैर में चोट लग जाए तो मैं उसे अनदेखा नहीं करूंगा या निकाल कर उसे घर में नहीं रख दूंगा, क्योंकि वह मेरी देह है, मेरी देह का अंग है। इसी प्रकार मेरी पत्नी भी मेरी ही देह है। यह समझना कठिन है, परंतु यह घनिष्ठता है। देखिए उत्पत्ति की पुस्तक 2:23-25 में लिखा है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। मेरे प्रियो, यह एक व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ संबंध था। विवाह पश्चात जब पति पत्नी में पहला झगड़ा होता है, तब पत्नी पलंग पर लेट जाती है और पति सोफा पर लेट जाता है और सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आप अपने पांव की चोट को अनदेखा नहीं करते हैं, आप इससे क्रोधित नहीं होते हैं, आप उस घाव को साफ करते हैं, मैं यूं कहूं कि पांव से लात नहीं मारते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो अधिक कष्ट उठाएंगे। आप अपनी देह को डॉक्टर को दिखाते हैं और सब कुछ ठीक करने के लिए आप तैयार रहते हैं। यही कारण है कि पति पत्नी झगड़ा करने की अपेक्षा बैठकर मतभेद दूर करें। मेरे विचार में पत्नी को अपने पति से स्पष्ट कह देना चाहिए कि उसे कैसा लगता है और वह उसे कैसे दुख पहुंचाता है और उसके विचार में गलत क्या है। पति को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वे एक देह हैं, वे इस घनिष्ठ संबंध में जुड़े हुए हैं, जोड़े गए हैं। और पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिल जाता है और वे एक देह हैं, उन्होंने एक नई सृष्टि आरंभ की है। विवाह संबंध ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ, ऐसे परिवार को देखना कैसा उत्तम है जिसमें पति पत्नी के मध्य दीवार ना हो, वे दोनों खुली किताबें हों, वे एक दूसरे को जानें और एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें। ऐसे संबंध के बिना मेरे प्रियो, आपको विवाहित जीवन में समस्या ही समस्या होगी। परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है। विवाह साथ रहने और सोने के समझौते से कहीं अधिक है। एक दूसरे का चुनाव करने से पूर्व उन्हें जानना है कि वे एक देह हैं और आप किसी भी कीमत पर अपनी देह को कष्ट नहीं देंगे। पौलुस कहता है इफिसियों के पत्री 5:32 में, यह भेद तो बड़ा है पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, स्वर्ग में हम मसीह यीशु के समान होंगे। यूहन्ना लिखता है 1 यूहन्ना 3:2 में, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हमारी देह उसकी नाई महिमामय होगी, हम उसके साथ एक होंगे, हम उसके देह के अंग हैं और उसके साथ एक हो जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:2-3 में प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह कैसी महान बात है कि हम अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि कोई भी प्राणी, यहां तक कि स्वर्गदूतों को भी प्रभु यीशु के साथ ऐसे घनिष्ठ संबंध का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा जितना कि मनुष्यों को है। वह दिन वास्तव में महिमा से पूर्ण होगा, हम उसकी संगति और उसके साथ एकता का उत्सव अनंत काल तक मनाएंगे। मेरे प्रियो, यह क्या ही सौभाग्य की बात है कि हम एक रिश्ते में आ जाते हैं, एक देह में आ जाते हैं। जिस प्रकार से हमें उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि हम पति पत्नी के रिश्ते को समझें कि हम एक देह हैं, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु के साथ एक देह होंगे। क्या आज आप उस परमेश्वर के साथ एक होने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में उन कार्यों को कर रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? मेरे मित्रों, यह समय है कि अपने आप को तैयार करें, उन सारे बुराइयों को छोड़ करके परमेश्वर की ओर लौट आएं, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता है, वह चाहता है कि आप उसके पास रहें। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
यीशु सच की तू ही पहचान।